वे सहयोगी साधन है, वे योग के साक्षात साधन नहीं है। और महाराज योग जो है ये जीवन की वर्तमान मांग है, ये जीवन की वर्तमान मांग है, क्योंकि वर्तमान में ही हम सबको परम शांति चाहिए। ये परम शांति ऐसी चीज नहीं है कि जिसके लिए आप ये कहेंगे धीरे धीरे प्राप्त हो जाएगी, कालांतर में प्राप्त हो जाएगी। तो भाई जब वर्तमान में हमको परम शांति चाहिए तो परम शांति का प्रतीक है योग, क्योंकि योग के बिना परम शांति किसी को नहीं मिलती, और किसी को नहीं मिलती। इससे ये सिद्ध हुआ कि राग रहित होने के जितने उपाय हैं वे सब योग के साधन हैं, वे ही योग के साधन हैं। अब राग रहित आप विचार से भी हो सकते हैं, राग रहित आप कर्तव्य निष्ठ होने से भी हो सकते हैं, और राग रहित आप अपने को समर्पित करने से भी हो सकते हैं। अगर आप ईश्वरवादी हैं तो आत्मसमर्पण से भी योग की प्राप्ति हो सकती है। अगर आप अध्यात्मवादी हैं तो विवेक पूर्वक असंगता से भी योग की प्राप्ति हो सकती है। यदि आप भौतिकवादी हैं तो कर्तव्य परायणता से भी योग की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन इसका अर्थ ये न समझ बैठिए कि कर्तव्य परायणता के बाद जब हमें योग की प्राप्ति होगी तब हमारे जीवन में आध्यात्मता नहीं आएगी, ऐसा मत अर्थ लगाइए। अथवा जब असंगता पूर्वक जब हम अध्यात्मवादी होंगे तो हमारे जीवन में आस्तिकता नहीं आएगी, ऐसा मत सोचिए। साधन का आरंभ कहीं से हो लेकिन अंत में वो पूर्णता प्रदान करता ही है। अर्थात कर्तव्य निष्ठ होकर भी हम योग बोध प्रेम को प्राप्त हो सकते हैं, असंग होकर भी हम योग बोध प्रेम को प्राप्त हो सकते हैं, समर्पित होकर भी हम योग बोध प्रेम को प्राप्त हो सकते हैं। अब ये आपकी अपनी रुचि की बात है कि आपको पहले कर्तव्य निष्ठ होना है अथवा असंग होना है अथवा शरणागत होना है। इसमें कोई आग्रह न कीजिए, अपने साथ आग्रह मत कीजिए, अपितु जैसी आपकी अभिरुचि हो। यदि आपके जीवन में क्रिया का वेग अधिक है तो पहले कर्तव्य परायणता को अपनाइए, फिर अपने आप असंगता आएगी और फिर अपने आप समर्पण भाव आ जाएगा। यदि आपके जीवन में विचार शक्ति प्राबल्य है, विवेक शक्ति प्रबल है तो पहले असंगता को अपनाइए, फिर अपने आप कर्तव्य परायणता और समर्पण भाव आ जाएगा। ऐसे ही अगर आपके जीवन में भाव शक्ति सबल है तो पहले समर्पण भाव को अपनाइए, फिर अपने आप असंगता और कर्तव्य परायणता आ जाएगी। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रत्येक भाई प्रत्येक बहन अपनी रुचि के अनुसार कहीं से भी साधन का आरंभ कर दें, कहीं से भी साधन का आरंभ कर दें, बस आरंभ करने में भेद होगा, अंत में हम सब एक हो जाएंगे, ये निर्विवाद सत्य है। अब विचार ये करना है कि भाई देखो दर्शन अनेक हैं, मान्यताएं अनेक हैं, पर जीवन हम सबका एक है। तो जीवन की एकता होने से दार्शनिक भेद से हम परस्पर में भिन्नता उत्पन्न कर लें, भेद उत्पन्न कर लें, राग द्वेष उत्पन्न कर लें, ये हमारी भूल है। आप विचार कीजिए एक भाई है, कल्पना करो उसके जीवन में ईश्वर का विश्वास नहीं है, तो क्या आप ईश्वरवादी होने के नाते उसके साथ बुराई करेंगे? क्या राय आप? नहीं करेंगे। अच्छा कल्पना करो कि एक आदमी ईश्वरवादी है तो आप भौतिकवादी होने के नाते क्या उसके साथ बुराई करेंगे? नहीं कर सकते। ऐसी कल्पना करो कि एक भाई अध्यात्मवादी है तो आप ईश्वरवादी या भौतिकवादी होने के नाते क्या उसके साथ बुराई करेंगे? कहने का मेरा तात्पर्य यह था कि मानव मात्र के साथ ये एक अनिवार्य विधान है कि उसे किसी के साथ किसी भी परिस्थिति में बुराई करने का अधिकार नहीं है। जब बुराई करने का अधिकार है ही नहीं तो मैं आपसे पूछता हूं परस्पर में स्नेह नहीं रहेगा, एकता नहीं रहेगी, विश्वास नहीं रहेगा? अगर हम किसी के साथ बुराई करने के लिए राजी नहीं है तो क्या सभी का हमारे प्रति विश्वास स्नेह एकता नहीं होगी? अवश्य होगी। कहने का मेरा तात्पर्य यह था कि आज लोगों ने मजहब का भेद होने पर, इज्म का भेद होने पर वो अमानवता की महाराज जिसको सुनकर हृदय कांपता है। तो मेरा निवेदन ये था कि हम सब मानव हैं और मानव होने के नाते साधक हैं और साधक होने के नाते हम सबका कोई साध्य है और साध्य कहते ही उसको है जिसकी प्राप्ति हो सकती है, इसी जीवन में हो सकती है, इसी परिस्थिति में हो सकती है, तो वो हमारा साध्य क्या है। अगर हम एक सीधी सादी बोलचाल भाषा में कहें तो परम शांति है, स्वाधीनता, अगाध प्रियता, ये हम सबका साध्य है। और ये साध्य भौतिकवादी को भी मिल सकता है, अध्यात्मवादी को भी मिल सकता है, ईश्वरवादी को भी मिल सकता है। आपके मन में एक कौतूहल होता होगा कि बेपढ़ा लिखा आदमी ये अध्यात्मवाद और आस्तिकवाद का भेद क्यों करता है। विचार करें, गंभीरता से विचार करें, क्या आप बुद्ध को अध्यात्मवादी नहीं कहेंगे? अध्यात्मवादी का अर्थ क्या है? जिसने अवस्थाओं से अतीत जीवन में आस्था की। भौतिकवादी का अर्थ क्या है? जिसने 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 जगत में आस्था स्वीकार की हो। लेकिन जगत दो नहीं है, एक है, एक है। और ईश्वरवादी क्या है? जिसने प्रभु में आस्था की हो, सुने हुए प्रभु में। देखिए, माफ कीजिएगा, मैं कट्टर ईश्वरवादी होने पर भी ईश्वरवाद का प्रचारक नहीं हूं। क्यों नहीं हूं? इससे बढ़कर आप ईश्वर की क्या बेइज्जती कहें करेंगे कि आप लोगों से कैसे आप ईश्वर को मान लीजिए। मैं आपसे पूछता हूं, क्या ईश्वर के मानने से ईश्वर का महत्व बढ़ेगा? क्या राय आप? नहीं, आपका ना बढ़ेगा। तो अगर आपको अपना महत्व बढ़ाना हो तो आपकी 100 बार गरज हो तो ईश्वर को मानिए। हम क्यों इस बात पर बिगड़े कि साहब आप ईश्वर क्यों नहीं मानते? अरे अगर आपका बिना ईश्वर के माने काम चलता है तो चलाइए। ऐसे ही मैं आपसे पूछता हूं कि आपको ये अधिकार है कि आप किसी को विवश करें कि नहीं तुम अध्यात्मवादी हो जाओ? मैं कहता हूं अगर किसी का बिना अध्यात्मवादी हुए काम चलता है हाँ तो चलने दीजिए। ऐसे ही क्या आप मजबूर करेंगे कि नहीं नहीं तुमको भौतिकवादी होना ही है, तुमको भौतिकवादी होना ही है? अगर आप किसी को मजबूर करेंगे तो सच मानिए आपकी ये आपका ये आग्रह दूसरे में एक विचित्र आग्रह पैदा कर देगा। नतीजा ये होगा कि न वो आपकी मानेगा न आप उसकी मानेंगे, परस्पर में एक संघर्ष हो जाएगा। इसलिए मेरे भाई आज बड़ी गंभीरता से इस समस्या पर विचार करना है। हाँ, अगर हम ईश्वरवादी हैं तो हमारा जीवन स्वयं ईश्वरवाद के प्रचार में हेतु होगा। अगर हम अध्यात्मवादी हैं तो हमारा जीवन स्वयं अध्यात्मवाद के प्रचार में हेतु होगा। अगर हम भौतिकवादी हैं तो हमारा जीवन स्वयं भौतिकवाद के प्रचार में हेतु होगा। एक बात। दूसरी बात सोचिए, कोई भले ही अध्यात्मवादी कहेगा भौतिकवादी नहीं होते हैं, लेकिन भौतिकवादी को भूख लगती है कि नहीं? रोटी खाता है कि नहीं? वस्तु उसको चाहिए कि नहीं? तो आवश्यक वस्तु उत्पादन करके व्यक्तियों की सेवा में, प्राणियों की सेवा में लगाना, यही ना भौतिकवाद है? कि भौतिकवाद कुछ और है? इसलिए भाई अध्यात्मवादी के जीवन में भी आंशिक भौतिकवाद रहता है। अब आप विचार कीजिए कि कोई भौतिकवादी है, उससे हम पूछें तुम सच बताओ तुम्हें स्वाधीनता चाहिए कि नहीं? और वस्तु के अधीन स्वाधीनता मिलेगी, व्यक्ति के अधीन स्वाधीनता मिलेगी, परिस्थिति के अधीन स्वाधीनता मिलेगी? अगर जीवन की मांग स्वाधीनता है तो क्या भौतिकवादी के जीवन में अध्यात्मवाद नहीं है? इसी प्रकार आप विचार करें, आपको स्वाधीनता भी मिल गई, आपको आवश्यक वस्तु भी मिल गई, आपको परम शांति भी मिल गई, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि आप ही बताओ कि आपको अनंत रस चाहिए कि नहीं चाहिए, तो आपको मानना ही पड़ेगा कि हमको अनंत रस चाहिए। तो मेरे भाई, बिना प्रेम की जागृति के अनंत रस मिल सकता है और बिना ईश्वरवाद के प्रेम की जागृति हो सकती है? त्रिकाल में भी नहीं हो सकती। हाँ, ये दूसरी बात है कि आत्मरति, विश्व प्रेम और प्रभु प्रेम, ये तीनों ही दृष्टि से प्रेम एक है, प्रेम एक है। तो भाई, किसी ने पहले प्रभु प्रेम प्राप्त करके आत्मरति और विश्व प्रेम को प्राप्त कर लिया, किसी ने विश्व प्रेम को प्राप्त करके आत्मरति और प्रभु प्रेम को प्राप्त कर लिया, किसी ने आत्मरति को प्राप्त करके विश्व प्रेम और प्रभु प्रेम प्राप्त कर लिया। आप कहेंगे कैसे? इसलिए कि प्रेम आरंभ चाहे कहीं हो किंतु वो स्वभाव से विभू हो जाता है। क्यों विभू हो जाता है भाई? इसमें भी एक दार्शनिक रहस्य है, और वो दार्शनिक रहस्य ये है कि प्रेम जब कभी होगा जीवन में तब दो तीन बातों से होगा। एक तो ये कि हम अपना प्रेमास्पद स्वीकार करें, हमारा कोई प्रेमास्पद है। दूसरी बात ये कि कुछ न चाहें, चाह रहित हो जाएं। और तीसरी बात ये कि अपने पास जो कुछ है वो उसके अर्पित कर दें, अर्थात अपने पास अपना करके कुछ न रहे। जब अपने पास अपना करके कुछ नहीं है, हमें कुछ नहीं चाहिए है, तो आप ही बताओ, चाह रहित होने पर, संग्रह रहित होने पर जो प्रेम होगा वो सीमित होगा जी? नहीं होगा। जब सीमित प्रेम नहीं होगा तो कल्पना करो कि एक भौतिकवादी ने आरंभ में भले ही विश्व की सत्ता स्वीकार की हो, लेकिन विश्व से अतीत जो जीवन है वहां तक वो प्रेम नहीं पहुंचेगा, वो प्रभु तक प्रेम नहीं पहुंचेगा, अवश्य पहुंचेगा। चाहे वो ये न कहे कि मुझ में जो प्रेम है वो प्रभु से मेरा प्रेम है, ये भले ही न कहे। मुझ में जो प्रेम है वो आत्मा में मेरा प्रेम है, ये भले ही न कहे, लेकिन प्रेम तो भाई मेरे स्वभाव से ही विभू है, नित्य है, अनंत है, दिव्य है, चिन्मय है। और उसी प्रेम से एकता प्रत्येक भाई की, प्रत्येक बहन की हो सकती है। तो आज हम इस बात पर संघर्ष करें कि साहब आप भौतिकवादी क्यों हैं, कि आप साहब अध्यात्मवादी क्यों हैं, कि साहब आप ईश्वरवादी क्यों हैं, ये आग्रह करना क्या अपनी भूल नहीं है? यदि ये अपनी भूल है तो अनेक मत होने पर, अनेक इज्म होने पर, अनेक मान्यताएं होने पर हमारा जीवन क्यों क्यों प्रेम से पूर्ण नहीं हो सकता? अवश्य हो सकता है। जो लोग ये मानते हैं कि कर्म का भेद होने पर, मान्यता का भेद होने पर, दार्शनिक भेद होने पर प्रीत की एकता नहीं हो सकती है, वे सचमुच अपने पर अपना शासन नहीं करते हैं। वो स्वयं अपने सिद्धांत से अपने को सुंदर नहीं बनाते हैं, अर्थात उनका जीवन और उनकी मान्यता में भेद है। ऐसी दशा में व्यक्ति के जीवन में ये आग्रह होता है कि जो मैं मानता हूँ वही सब माने, जो मैं करता हूँ वही सब करें। ये आग्रह उसी के जीवन में रहता है जो स्वयं नहीं करता है। इस दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तो जीवन में असफलता का एकमात्र कारण अपनी ही भूल है, और भूल के मिटाने का नाम ही वास्तव में सत्संग है। ये दो बर्फ खा नहीं सकते। क्या कारण? सुख भोग में शक्ति का हिरास, भोग्य वस्तु का विनाश और पराधीनता है या नहीं जी? है। ये कोई मेरी अपनी बात नहीं प्रभु, ये आप सबकी अपनी बात है। लेकिन शांति में असमर्थता नहीं है, पराधीनता नहीं है, निरस्ता नहीं है। तो अगर कल्पना करो कि हम सुख से वंचित होकर यदि शांत से अभिन्न हो जाएं, तो विकास हुआ गहरा विकास, और शांत से वंचित होकर सुख में सुख को प्राप्त कर लें तो विकास हुआ गहरा गहरा। इसलिए मेरे भाई, हमें और आपको सुख की दासता से मुक्त होकर शांत रस से, स्वाधीनता के रस से, प्रेम के रस से अभिन्न होना है और हो सकते हैं। तो भौतिक विज्ञान की दृष्टि से सेवा मात्र से ही हमारा कल्याण और सुंदर समाज का निर्माण हो सकता है। इसी प्रकार आध्यात्म विज्ञान से भी, आध्यात्म विज्ञान का अर्थ क्या है? जगत से अतीत की सत्ता को स्वीकार करना, अवस्था अतीत सत्ता को स्वीकार करना, अन उत्पन्न हुए तत्व को स्वीकार करना, अर्थात जो अविनाशी है उस तत्व को स्वीकार करना। तो आध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से जो अविनाशी तत्व है, जो अविनाशी जीवन है, उसकी प्राप्ति एकमात्र
त्याग से होती है। अगर अविनाशी जीवन की प्राप्ति धन से होती तो अमेरिका में अमेरिकन को हो जाती है, और भैया चतुराई से होती तो अपनी पुरानी सरकार लंदन वालों को हो जाती, और भैया बड़े बड़े संगठन से होती तो रूस वालों को मिल जाती स्वाधीनता। और भैया अगर अविनाशी जीवन की प्राप्ति आलस और अकर्मणता से होती तो हम लोगों को मिल जाती। हिंदुस्तान आलस और अकर्मणता में एक नंबर रखता है आजकल। तो भाई उस अविनाशी जीवन की प्राप्ति किसी परिस्थिति विशेष से, किसी ज्ञान विज्ञान कला से नहीं होती, एकमात्र त्याग से होती है। और त्याग का स्वरूप क्या है? अहम और मम का नाश, मैं और मेरे का नाश, जो कुछ प्राप्त है वो अपना नहीं है, अपने लिए नहीं है, और किसी स्वीकृति में जो अहम बुद्धि है, शरीर में जो अहम बुद्धि है, इसका जो त्याग है, इसी से आपको अविनाशी जीवन मिल सकता है। अब आप विचार करके देखें कि शरीर में अहम बुद्धि का त्याग या वस्तुओं में मम बुद्धि का त्याग कोई कठिन है? बिल्कुल कठिन नहीं है। लेकिन कब? जब आप स्वयं विचार करें तब। बोले कैसे विचार करें? कि भाई ऐसे विचार करें कि जिसको यह करके संबोधन करते है निर्वासना आ जाती है, निर्वासना आते ही जितने दिव्य गुण है, निर्वैरता, निर्भयता, समता, मुदिता, ये समस्त दिव्य गुणों की अभिव्यक्ति होती है। और जब इन समस्त दिव्य गुणों की अभिव्यक्ति होती है तो शरीर विश्व के लिए उपयोगी हो जाता है और अपने लिए जगत की आवश्यकता नहीं रहती। इस प्रकार आध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से भी हम सब उस अविनाशी जीवन से अभिन्न हो सकते हैं। इस अब तीसरी बात रही आस्तिक विज्ञान की बात। तो आस्तिक विज्ञान ने हमें क्या बताया? प्रभु है, प्रभु है, और वे एक हैं, और भैया सबसे अच्छे हैं। जिससे कोई अच्छा उसका नाम प्रभु नहीं, दो हो उसका नाम प्रभु नहीं, एक है और सबसे अच्छा है और सभी का है। तो जब हमारी प्रभु में आत्मीयता हो जाती है तब ममता, कामना, तादात्म अपने आप नाश हो जाता है। तो भाई प्रभु में आत्मीयता होते ही प्रियता जागृत होती है। जो जो अपना है वो अपने को प्यारा है, और जो भैया प्यारा होता है ना उसमें मन लगता है कि नहीं लगता है? अच्छा, जिसमें मन लगता है तो मन का स्वभाव जानते हो क्या है? जिसमें लग जाए उसी से अभिन्न हो जाता है कि नहीं है? तो जब हमारा मन प्रभु में लगेगा तो प्रभु का प्रेम हो जाएगा, क्योंकि प्रभु होकर तो मन अभिन्न होगा नहीं, प्रभु का प्रेम होकर आपका मन प्रभु से अभिन्न होगा। तो जब प्रभु का प्रेम होकर आपका मन प्रभु से अभिन्न होगा तो आपका जीवन प्रभु के लिए भी उपयोगी हुआ, और प्यास के द्वारा आपका जीवन आपके लिए भी उपयोगी हुआ, और सेवा के द्वारा आपका जीवन जगत के लिए उपयोगी हुआ। तो ऐसा अनुपम जो मानव जीवन है वो हमें और आपको मिला है। परंतु दुख की बात यह है कि आज हम मानव जीवन का गौरव नहीं करते। गौरव क्या करते हैं? साहब ये कौन है? साहब मिल ओनर है। ओहो, तो मिल का गौरव हो गया, मानव का कोई गौरव ही नहीं रहा। विचार करो, बोले कौन है? साहब अभी तक चीफ मिनिस्टर है। तो पद का गौरव हो गया, मानव का कोई गौरव ही नहीं हुआ। बोले कौन है? साहब इनको तो, ये तो बहुत बड़े ऑफिसर है। तो आज हम पद के गौरव से गौरवान्वित होते हैं, वस्तु के गौरव से गौरव वाले होते हैं, परिस्थिति के गौरव से गौरव वाले होते हैं, लेकिन भूल गए इस बात को कि हम मानव है, इसलिए हमारा गौरव है, इसलिए हमारा गौरव है। तो मेरे कहने का तात्पर्य था कि मेरे भाई आज हमें इस मानव जीवन के महत्व को जानना है और अपनाना है, और अपना करके जीवन जगत के लिए, अपने लिए और प्रभु के लिए उपयोगी करना है, और वो हो सकता है ये निर्विवाद
उपस्थित है।
उपस्थित है।